बल्कि आत्मशुद्धि के लिए होना चाहिए। और इसलिए जब भगवान के इन लीलाओं के ऊपर
हमारे आचार्य टीका लिखते हैं, तो वो जो टीकाएं हैं वो हमारे आत्मशुद्धि के लिए है। अन्यथा यदि हम केवल लीलाओं को पढ़ेंगे या श्रवण करेंगे तो उसमें मनोरंजन तो बहुत मिलता है, भगवान श्री कृष्ण की विशेष लीलाओं को पढ़ने में और श्रवण करने में, परंतु उसके साथ साथ आत्मरंजन, मनोरंजन के साथ आत्मरंजन, इसका अर्थ है आत्मा का रंजन, जो तब संभव है जब आत्मा का शुद्धिकरण होता है। इसलिए ये जो एक लीला है, भगवान ने दावाग्नि का पान किया, दो दफा किया भगवान ने दावाग्नि का पान, परंतु आज हम इस कथा को लेंगे जब भगवान अपने सखाओं के साथ वन में गौओं को लिए हुए उनको चरा रहे थे, और उस समय मुंजातवि जो एक वन था वहाँ पर ये वन में अग्नि लगी और भगवान ने किस प्रकार से इसे बुझाया नहीं, इसका पान किया, इसलिए कहा गया है दावाग्नि पान। और अपने ग्वाल सखाओं को और गौओं को, अन्य पशुओं को, पूरे वन को भगवान ने किस प्रकार से बचाया, और कैसे भगवान हमें बचा रहे हैं अपनी इस लीला करने के पश्चात। अब रोज भगवान अपने गौओं के साथ, सखाओं के साथ निकलते सुबह सुबह, और रोज कुछ न कुछ ऐसी विचित्र लीला होती कि सारे सखा रात भर सोचते रहते कि कल कौन सा राक्षस आने वाला है, कौन सा नया राक्षस कौन से नए भेष में आएगा। जैसे कि भगवान अलग अलग योनियों में अवतार लेते हैं, वैसे कंस भी राक्षसों को अलग अलग रूप में भेजा करता था, कोई बगुले के रूप में आ गया, कोई सर्प के रूप में आ गया, कोई बैल के रूप में, सांड के रूप में, कोई वत्स के रूप में, कोई लक्ष्मी के रूप में, पुतना लक्ष्मी के रूप में आई। तो कंस भी सोच रहा था कि भगवान अपना धाम छोड़कर आए हैं तो थोड़ा वैरायटी देना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही प्रकार का कोई राक्षस एक ही रूप में हर समय कंस भेजा करता, नहीं, कंस ने बहुत वैरायटी रखी। तो ग्वाल सखा भगवान के वो पूरी रात भर यही सोचते रहते कि कल क्या क्या करेंगे हम, उसकी तैयारी में। और वो रोज सुबह भगवान श्री कृष्ण जो कि श्रृंग अपना बजाते उनको बुलाने के लिए, तो श्रृंग बजाने की ध्वनि की प्रतीक्षा में रहते हो, वो उनका अलार्म क्लॉक था। उसे न केवल वो अपनी बाहरी नींद से उठते, परंतु जो एक जीवात्मा की नींद है, जिस नींद में हम भगवान को भूले हुए हैं, हालांकि आंख खुली है परंतु तमोगुण अंदर इतना है कि फिर भी भगवान के प्रति होश नहीं, तो प्रतीक्षा करते भगवान कब उन्हें पुकारते। और इस दिन सभी निकले अपने अपने गौओं को लेकर, और क्योंकि ये सब छोटे थे, ये कोई बहुत वयस्क ग्वाल बाल नहीं थे या ग्वाल सखा नहीं थे भगवान के, छोटे छोटे भगवान के ही हम उम्र के थे, और इसलिए जो बड़े बुजुर्ग गोपगण वो गौओं को दे दिए थे इनके संरक्षण में, क्योंकि वो जानते थे कि इनके साथ कृष्ण हैं। अगर कृष्ण नहीं होते तो इन छोटे छोटे ग्वालों को गौओं की रक्षा नहीं देते ये लोग। अरे ये लोग तो सब सोच रहे थे कि हमारी रक्षा ये छोटा सा कृष्ण कर रहा है, तब फिर क्या डर है कि हम अपने बच्चों को गौओं के साथ भेज दें। तो पूरा दिन भर ये विचरण किया करते अलग अलग वनों में, और हम इसकी चर्चा किए हमारी कथा में कि कौन कौन से खेल खेला करते थे सारे सखा, और जो गौएं थी वो इतना आनंद लिया करती थी कि जब भगवान अपने सखाओं के साथ खेलते तो ये गौएं वहां पर घास को चरना भूल जाती। ये विशेष रूप से वन में आए हैं ताकि गौएं वहां पर घास चरें, तो गौएं घास चरेंगी तो दूध बनेगा, दूध बनेगा तब जाकर ये पूरे वैश्य समुदाय का व्यवसाय चलेगा। परंतु यहां पर अब लीलाएं भगवान की इतनी मधुर है कि गौएं, यहां तक बताया गया है कि जब भगवान कुछ विशेष लीला करते, हालांकि सभी सखा भगवान के साथ ही सब कुछ खेल इत्यादि किया करते, परंतु कई बार भगवान स्टेज ले लेते, वो करते अकेले कुछ नृत्य या बांसुरी वादन या किसी की नकल उतारना, मिमिक्री। तो भगवान जब अकेले कुछ किया करते तो सभी भौचक्के होकर भगवान को केवल एक टक नजर से देखते रहते। और गौओं के विषय में बताया गया है कि कई गौएं, उनके मुंह में घास होता तो आधा चबा हुआ घास वैसे ही मुंह में रह जाता, और उनका जो मुंह वो वैसे ही थम जाता कि मुंह को हिलाएंगे तो ध्यान भंग हो जाएगा। इतना सुंदर ध्यान लगा है भगवान के ऊपर तो ध्यान भंग हो जाएगा। तो अपने इंद्रिय भोग को छोड़कर भगवान की इंद्रियों का दर्शन करने के लिए इतने आतुर ये गौएं। ऐसा कभी हमने अनुभव किया है? हम प्रसाद खा रहे हैं और गौओं का मन पसंदीदा प्रसाद क्या है? ताजा घास। तो हमारा मन पसंदीदा कोई प्रसाद सामने है और कोई भगवान का दर्शन शुरू हुआ है या भगवान के विषय में कोई कुछ कह रहा है, कभी हमने ऐसा अनुभव किया है कि खाते खाते हम रुक गए, वो घास जो हमने खाया, घास का अर्थ मॉर्सल जिसे अंग्रेजी में कहेंगे, वो जब हमने लिया तो ऐसा कभी अनुभव किया है कि मुंह में ही रुक गया वो। अब न तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, न उगल सकते हैं, न निगल सकते हैं। कभी ऐसा अनुभव हुआ है? इतना ध्यान भगवान के ऊपर। तो यहां गौओं से हम सीखते हैं कि भगवान के ऊपर ध्यान किस प्रकार से लगता है किसी शुद्ध भक्त का। तो इस दिन भगवान क्रीड़ा आसक्तेषु, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपने गोपों के साथ क्रीड़ा में आसक्त। अब यहां पर भगवान रोज अपने गोपों के साथ क्रीड़ा में आसक्त रहते। भगवान जो कुछ करते ध्यान पूर्वक अपना सर्वस्व उस लीला में दे देते। गोपों के साथ है तो अपना सर्वस्व गोपों को दे देना, गोपियों के साथ तो सर्वस्व गोपियों को दे देना। तो यहां पर भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोपेशु क्रीड़ा आसक्तेशु, अपने गोपों के साथ क्रीड़ा में आसक्त भगवान, और भगवान आसक्त तो गोप भी आसक्त। तो इतना आसक्त गोप और भगवान क्रीड़ा में खेलने में कि जो गौएं थीं वो, उन्होंने देखा कि अब ये अपनी क्रीड़ा में आ सकते हैं, तो हम जिस क्रीड़ा के लिए आई हैं हमें अपनी उस क्रीड़ा में आसक्त होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी सेवा थी। ऐसा नहीं कि वो उसमें भोग ढूंढ रही थी, उनकी सेवा थी कि तृण वो खाएंगे, घास वो खाएंगे तो दूध बनेगा, और दूध बनेगा तो भगवान के लिए उस दूध से मक्खन इत्यादि ये सब कुछ उत्पादन होगा, तो ये उनकी सेवा थी। परंतु यहां पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर और अन्य आचार्य कहते हैं कि यदि हम गौओं की तुलना और अन्य पशुओं की तुलना हम जो तटस्थ जीव हैं उनसे करें, तो कल्पना कीजिए कि हम उसी वन में हैं जहां भगवान अपने गोपों के साथ क्रीड़ा में आ सकते हैं। कुछ समय के लिए कल्पना कर सकते हैं हम कि हम भी उसी वन में हैं और हम इन गौओं के समान वहां पर स्थित हैं, उस जगह उस प्रसंग में। तो हमारी तुलना गौओं से की गई है, या गौओं की तुलना तटस्थ जीवात्मा। जीवात्मा को तटस्थ क्यों कहा गया है? जैसे कि समुद्र या किसी नदी का तट होता है, तो तट न तो उसे आप गीला कहोगे ना सूखा कहोगे, क्योंकि कई बार जो लहरें आती हैं उस तट को गीला करती हैं, और जब लहरें नहीं उस तट तक आती तो तट सूखा रहता है। तो कोई ठीक से ये नहीं कह सकता कि तट पूर्ण रूपेण गीला है या पूर्ण रूपेण सूखा है। वैसे ही बद्ध जीवात्मा कभी माया में, कभी कृष्ण भावना में, कभी महामाया में, कभी योग माया में, इसलिए उस जीवात्मा को तटस्थ कहा गया है। बॉर्डर लाइन कहते हैं, तो वो यहां पर उल्लेख किया गया है। तो तटस्थ होने के नाते हमारी चेतना बहुत बार महामाया की तरफ आकृष्ट हो जाती है, होती है नहीं होती है ना? बहुत बार महामाया का अर्थ ऐसा मत समझना कि बहुत अच्छी माया है, महामाया जैसे महामंत्र सबसे अच्छा मंत्र है, वैसे माया में यदि जाना है तो अरे अच्छे माया में जाना चाहिए, महामाया। तो यहां पर गौवें हुआ क्या कि भगवान अपने क्रीड़ा में आसक्त, और ये गौवें तृण लोभेन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तृण के लोभ से वो धीरे धीरे भगवान का संग और गोपों का संग छोड़कर वन में प्रवेश कर दिया। वन में वो भी अंतप्रविष्ट, वन के अंत विभाग में प्रवेश किया तृण के लोभ से। और तृण का लोभ क्या था कि जब गौओं ने देखा कि इतना सा तृण उन्होंने खाया, तो देखा कि आगे और भी अच्छा तृण दिख रहा है, जैसे कहते हैं ना, द ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि घास बहुत हरी लगती है जितनी दूर दिखती है, दूर के ढोल सुहावने। और वही ढोल जब पास में आ जाते हैं और जब हम ढोल बन जाते हैं तब तो फिर क्या कहें। तो तृण के लोभ से ये गौएं धीरे धीरे भगवान का संग छोड़कर, तो यहां पर ये बताया गया है क्योंकि हम तटस्थ जीव हैं इसलिए इंद्रिय भोग के लोभ में आकर हमने आध्यात्मिक संसार छोड़ा, जैसे इन गौओं ने अब भगवान का संग छोड़ा। इसलिए तृण लोभेन इसकी तुलना की गई है इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, इस तटस्थ जीव की इंद्रिय भोग की इच्छा, ये गौओं की तृण लोभ की इच्छा से की गई है। और ये तृण लोभ देखिए बहुत गौओं के लिए बहुत प्रलोभन देने वाला होता है, क्योंकि गौओं के अंदर देखा गया है कि उनका चरना कभी रुकता नहीं, हर समय वो चरवण चालू रहता है। यदि घास न भी हो तो जो घास पहले खाया हुआ है उस घास को फिर से दूसरे पेट से निकालते हैं, खाए हुए घास को, और फिर से उसका चरवण करते रहते हैं। वैसे ही बद्ध जीव यदि इंद्रिय भोग सामने नहीं भी है तो पहले जो इंद्रिय भोग किया है उसके विषय में कल्पना करता है कि हां 10 साल पहले जब मैं अपनी जवानी में था क्या क्या किया करता था मैं, कहां गए वो दिन। तो इस प्रकार से जब, इसलिए पाश्चात्य देश में उनका ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर अमल करते हैं पाश्चात्य देशी लोग कि जवानी में जितना इंद्रिय भोग करना है कर लो, जितना इंद्रिय भोग संचित करना है इंद्रियों से और मन में उसे घुसेड़ना है घुसेड़ दो, क्योंकि वृद्ध अवस्था में ये इंद्रियां सब निष्फल हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी, इसलिए ये इंद्रियां कोई भोग नहीं दे पाएंगी। तो वृद्ध अवस्था में मन, मन में जो कुछ भरा है पूरे जीवन भर और विशेष रूप से युवावस्था में, उस पर ध्यान करो। और वो कहते हैं दैट इज द परफेक्शन ऑफ ओल्ड एज, व्हेन यू हैव सफिशियंट थॉट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो गौएं तृण के लोभ से, यहां थोड़ा तृण देखा फिर उसे चरने के लिए, फिर वहां थोड़ा और देखा, धीरे धीरे धीरे। इसलिए जब आध्यात्मिक संसार से जीव का पतन होता है तो ऐसा नहीं कि सीधे वहां से गिरे और यहां टपके, ऐसा नहीं पतन होता है। वहां से धीरे धीरे जीव ब्रह्मलोक फिर अन्य ऊंचे ऊंचे लोक से गुजरते हुए, और कई जो जीव आध्यात्मिक संसार से पतित होते हैं वो ब्रह्मलोक में ही जान लेते हैं कि गलती कर दी। जैसे छोटा बच्चा किसी मेले में बहुत कोई वस्तुएं देखता है तो प्रलोभित होकर यहां वहां जाता है, परंतु यदि बुद्धिमान बच्चा है तो समझ लेता है कि मां बाप से दूर चला गया मैं, फिर रोना शुरू और भाग कर ढूंढ लेता है। तो वैसे कई जीव बुद्धिमान होते हैं ब्रह्मलोक से फिर से वापस लौट जाते हैं, परंतु हम जैसे कोई जो अति बुद्धिमान होते हैं वो फिर सोचते हैं कि थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या क्या बनाया है। तृण लोभ है ना, धीरे 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 उस लोभ से फिर हम देखते हैं तो इंद्रलोक का दर्शन करते हैं, देखते हैं वहां पर क्या क्या स्पॉट्स हैं देखने के इंद्रलोक में, फिर गंधर्व लोक में, वहां पर बहुत अच्छा गाते हैं, थोड़ा एक गीत उनका भी सुन के आते हैं, वहां का कौन सा चैनल चल रहा है आजकल तो गंधर्व लोक का चैनल सुनने के लिए। फिर इस प्रकार के लोभ से धीरे धीरे हम, इसलिए श्रील प्रभुपाद को जब पूछा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आध्यात्मिक संसार को छोड़कर यहां पर आए जहां पर सब सुख सुविधा है, तो प्रभुपाद ने कहा कि ये उसी के समान है जैसे कि हम रोज घर का बना घी का हलवा खा रहे हैं और एक दिन इच्छा होती है कि कुरमुरे की भेल खाएं। प्रभुपाद ने यही कहा, पफ्ड राइस, अंग्रेजी में उसे पफ्ड राइस कहते हैं कि वो चावल जो बहुत फूल गया है, तो हम भी जब थोड़ा फूल जाते हैं तो उसे खाने के लिए फिर घर से बाहर निकलना पड़ता है, फिर कहीं पर भेलपूरी ढूंढनी पड़ती है और फिर वहां पर जाते हैं। प्रभुपाद उस समय बोल रहे थे जब प्रभुपाद चौपाटी पर वॉक पर थे, प्रभुपाद ने कहा देखो ये लोग घर में खाना है, ऐसा नहीं कि इनके घर में खाना नहीं है, और वो ज्यादा स्वस्थ है घर का खाना, परंतु इच्छा हुई कि आज घर का खाना छोड़कर ये खाएं, इसलिए बाहर आए। तो बाहर आए तो खर्चा ज्यादा हुआ, समय और लगा, और जो खाया उसने पेट खराब किया। तो प्रभुपाद ने कहा वैसे ही हम आध्यात्मिक संसार में भगवान का दिया असली घी का हलवा खा रहे थे, परंतु हमें लगा कि थोड़ा नासिक का मिसल खाते हैं आके। अरे यदि भगवान से मांगते तो वो भी मिल जाता, कल्प वृक्ष है वहां पर, परंतु हमने इच्छा की नहीं। जैसे लोग कहते हैं कि चिक्की खानी है तो लोनावाला की, और घर में मां कहती है कि अरे मैं भी बना सकती हूं चिक्की, नहीं नहीं वो भी लोनावाला में मगनलाल की चिक्की होनी चाहिए। तो वैसे ही यदि इंद्रिय भोग करना भी है, उस इच्छा को पूरा भी करना है, तो यहां पर आकर तृण लोभेन। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि द्वेष हम नहीं किए भगवान से, द्वेष आध्यात्मिक संसार में हो ही नहीं सकता। ये क्यूरियोसिटी, इच्छा हुई हमारी जानने की, जैसे ये गाय तृण लोभेन दूर जाने लगी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी प्रथम स्कंद में कहते हैं नारद मुनि और व्यासदेव के संवाद में कि बद्ध जीव इस भौतिक संसार में और बद्ध अवस्था में कैसे गिरता है। बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें कहे हैं एतद् हि आतुर चित्ताणां मात्रा स्पर्शे छया मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्याणु वर्णनम। वो कहते हैं एतद् हि आतुर चित्ताणाम, किस भौतिक संसार में बद्ध जीवात्मा का चित्त बहुत आतुर है, और आतुर क्यों है, क्योंकि बहुत से इंद्रिय भोग के साधन हैं इस भौतिक संसार में। ये सबसे पहला कारण, इंद्रिय भोग के साधन। दूसरा कारण है इंद्रियां। यदि इंद्रियां हैं परंतु इंद्रिय भोग के साधन नहीं है तो इतना इंद्रिय भोग नहीं हो सकता। जैसे कि भारत में इंद्रिय भोग के इतने साधन नहीं हैं जितने पाश्चात्य देश में हैं, इसलिए इंद्रिय भोग के साधन कम होने की वजह से लोग पुण्य में लगे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि अंदर वो भोग करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि साधन नहीं है। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये कथा कहा करते थे कि एक ब्राह्मण, उसे ये भुने हुए मक्के खाने की बहुत तीव्र इच्छा रहती थी, जिसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पॉपकॉर्न। तो वो उसे खाने की बहुत इच्छा रहती थी। तो एक दिन उसे इतनी इच्छा थी, हालांकि वो ब्राह्मण था, पुजारी था, तो जो कुछ खाता भगवान को भोग चढ़ाकर, परंतु उसे लगा कि भगवान को यदि ये भोग चढ़ाऊंगा तो ये ठंडे हो जाएंगे, सिल जाएंगे, तो मजा नहीं आएगा खाने में। तो सोचे कि आज भगवान थोड़ा आप फास्टिंग पे रहो, तो खुद ही बिना भोग चढ़ाए उसे खाने का प्रयास किया, एकदम ताजा गरम गरम अपने लिए बनाया। और जैसे ही उसने हाथ, तो हल्के होते हैं वो काफी, जैसे उसने हाथ में लिया उसे खाने के लिए, हवा का झोंका बहा और जितना उसके हाथ में था सब उड़ने लगा। तो जैसे ही सब उड़ने लगा, वैसे भी नहीं मिलने वाला, तो जैसे ही वो सब यहां वहां उड़ने लगा हवा में, तो कहने लगा गोविंदा अर्पणमस्तु, कृष्णा अर्पणमस्तु, अरे मुझे तो नहीं मिलने वाला, चलो पुण्य तो कमा लेता हूं उनको अर्पित करते हो। तो ये स्थिति है कि जब तक इंद्रिय भोग नहीं मिलता, अंग्रेजी में कहावत है नाउडेज मोरालिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि कोई व्यक्ति ईमानदार इसलिए है कि चोरी करने के लिए कुछ है ही नहीं आजकल, यदि कुछ मिले नहीं चोरी करने के लिए तो हो सकता है कि वो कहे कि बहुत ईमानदार है। तो नारद मुनि कहते हैं कि सबसे पहला कारण है कि इंद्रिय भोग की व्यवस्था इतनी है और उसके साथ साथ इंद्रियां भी हैं। यह भी बहुत आवश्यक होना कि इंद्रिय भोग के साधन और इंद्रियां हमारे पास, जैसे कि किसी के पास बहुत धन है परंतु उस धन को भोग करने की शरीर में शक्ति नहीं है। धन बहुत है खाने के पदार्थ खरीदने के लिए परंतु अग्नि अंदर, अग्नि नहीं मंदाग्नि। इसलिए आजकल कहा गया है कि जो गरीब हैं वो भाग रहे हैं खाने के पदार्थ ढूंढने के लिए और जो अमीर हैं वो भाग रहे हैं जो खाए हैं उसे पचाने के लिए। The poor are running for the food and the rich are running for the appetite. दोनों भाग ही रहे हैं। तो इंद्रिय और विषय वस्तु दोनों होना आवश्यक है इंद्रिय भोग के लिए, परंतु वो कहते हैं कि इसके बीच में एक तीसरी वस्तु सबसे आवश्यक है, इच्छा। इंद्रिय भी है विषय वस्तु भी है परंतु बीच में इच्छा नहीं है तो इंद्रिय भोग नहीं होगा। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जब पैदा होते ही निकल पड़े, सुखदेव गोस्वामी पैदा हुए 16 साल के, सोचिए स्वीट 16 पैदा हुए, 16 साल तक माता के गर्भ में थे वो, और पैदा होते ही सुखदेव गोस्वामी निकल पड़े वन की तरफ। और वो क्यों नहीं अपने माता के गर्भ से निकल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था, पूरा साक्षात्कार हो गया था कि भौतिक संसार किस प्रकार का जंजाल है। इसलिए उन्हें अपनी माता के गर्भ से निकलना ही नहीं था। जैसे हम लोग जब अपनी माता के गर्भ में थे तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि हमने उस पीड़ा में प्रार्थना की भगवान से कि मेरी इस पीड़ा को बाहर निकालिए भगवान, या मुझे बाहर निकालिए। तूने गर्भ में प्रभु से किया था वादा, मैं भजन करूंगा हर लो बाधा। हमने गर्भ में ये वादा किया था कि मैं हे भगवान तेरा भजन करूंगा, ये बाधा मेरी हर लो। परंतु क्यों भूल गया सारी वो बातें, तेरी बदली नजरिया रे। हम बचपन में गाया करते थे, तो बाहर आने के बाद फिर नजर बदल गई, सब भूल गए और सब अपना बर्थडे मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो सभी अब पूरा हम केंद्र बन गए हैं, तो इसलिए हम भूल गए जो वादा हमने किया। और यहां पर सुखदेव गोस्वामी, उन्हें तो भगवान व्यासदेव वो सब आए, उन्हें कहे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन देता हूं, मैं जो माया का अधिपति हूं, मैं आश्वासन देता हूं कि तुम माया जाल में नहीं फंसोगे। तो भगवान के आश्वासन पर सुखदेव गोस्वामी ने जन्म लिया। सोचिए सुखदेव गोस्वामी का स्तर, कि वो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जन्म लूं या न लूं, क्या स्तर है उनका। और सुखदेव गोस्वामी जैसे निकल पड़े तो कुछ स्त्रियां वो स्नान कर रही थी युवावस्था में, युवतियां। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी वो 16 वर्ष के और ये युवतियां वो स्नान कर रही, परंतु सुखदेव गोस्वामी हालांकि उनकी भी इंद्रियां पूर्ण सक्षम इंद्रिय भोग के लिए और विषय वस्तु सामने, परंतु इच्छा नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी वो आगे निकल पड़े। तो नारद मुनि कहते हैं कि बद्ध अवस्था पूर्ण कब होती है, जब इंद्रिय, इंद्रिय भोग के विषय वस्तु और इच्छा, जैसे यहां पर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, ये गाय जो है तृण लोभीन, इसके वजह से बाहर निकली, दूर गई, भगवान के संग को छोड़ी। अब यदि हम इस भौतिक संसार की तुलना अब उस वन से करें, तो भौतिक संसार के विषय में बताया गया है, संसार दावा नलली ढलो का त्राणा या कारुण्य घन घनत्व, के संसार एक दावानल के समान है, भव महादावाग्नि। यहां पर भगवान ने दावाग्नि पान किया। तो अब यदि हम इस संसार की तुलना उस दावाग्नि से करें, परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये केवल साधारण अग्नि नहीं है, दावाग्नि, दावाग्नि अग्नि से बड़ी होती है मात्रा में, परंतु वो कहते हैं कि केवल दावाग्नि भी नहीं, महादावाग्नि है। तो ये भौतिक संसार यदि एक दावानल है, तो इस महादावानल या महादावाग्नि की विभिन्न श्रेणियां हमारे शास्त्र में बताई गई। अब देखिए, हम जब अपने एसी कार में या एसी ऑफिस में बैठते हैं या घर में बैठते हैं, तो समझ में नहीं आता महादावाग्नि, यहां पे तो ठंड लग रही मुझे, परंतु ये कोई ऐसी अग्नि नहीं है जो हमें दिखाई दे, ये ऐसी अग्नियां हैं जो हमारे अंदर से हमें जला रही हैं। इसलिए बाहर से चाहे कितना भी पंखा, कितना भी बड़ा एसी लगाओ, ये जो अंदर की अग्नि जलाती है जीव को, ये अंदर से उसे पसीना पसीना करती है, त्रस्त करती है, जलाती है। तो भगवद गीता के अनुसार सबसे पहली अग्नि कामाग्नि, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहे हैं, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महाशन महापापमा विद्येनाम इह वैरिणाम, कि जो काम वासना है, यही लोभ या काम वासना, ये जीव के अंदर इतना कूट कूट कर भरा हुआ है इस भौतिक संसार में कि अग्नि के समान है। दुष्पूरेण नलेन च, भगवान ने कहा। और दिलचस्प बात यह है या दुर्भाग्य की बात यह है कि बद्ध जीवात्मा इस कामाग्नि को शांत करने के लिए ईंधन डाल रहा है, इंद्रिय भोग का ईंधन, सोचते हुए कि पेट्रोल डालने से यह अग्नि शांत होगी। अब भगवान जब इस काम वासना की तुलना अग्नि से किए हैं, तो विशेष रूप से कलयुग में सभी जो जीव इतने त्रस्त हैं काम वासना से, तो भगवान के अनुसार ये पूरा कलयुग एक प्रकार से एक फर्नेस जिसे कहेंगे, कि सभी अपने अपनी अग्नियां जलाए हुए हैं, कामाग्नियां, तो अपनी अपनी अग्नियां तो जलाए हैं, और फिर व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्नियां जल रही हैं, कामाग्नियां। और केवल ऐसा नहीं कि एक बार जलाकर उस अग्नि को छोड़ दिया गया है, यदि अग्नि को एक बार जलाकर छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे शांत हो जाती है, यदि उसे कोई ईंधन न मिले तो। परंतु ये सारी जो कामाग्नियां हैं अलग अलग स्तर की, इनके अंदर हर क्षण ईंधन डाला जा रहा है और इसे और प्रज्वलित किया जा रहा है। तो ये सबसे पहली श्रेणी, परंतु ये ऐसी अग्नि है जो कभी शांत नहीं होने वाली। तो भगवान कहते हैं कि जब ये कामाग्नि शांत नहीं होती तब जीव उस अग्नि से अपने आप को निकालकर दूसरी अग्नि में डालता है, क्रोध अग्नि। जब काम वासना संतुष्ट नहीं होती तो क्रोध की अग्नि जलना शुरू होती है, तो व्यक्ति फिर क्रोध अवस्था में जाता है। और भगवान कहे हैं कि क्रोध के वजह से फिर स्मृति विभ्रम, बुद्धिनाश, प्रणश्यति, ये सब कुछ फिर उसके आगे का भविष्य, क्रोध का आगे का भविष्य। इसलिए क्रोध का एक और नाम है कामानुज, कि ये दोनों भाई हैं। ऐसा नहीं कि एक यदि है तो दूसरा नहीं होगा उसके साथ, दोनों भाई भाई साथ में रहते हैं, कभी अलग नहीं हुए हैं ये दोनों भाई। तो कामानुज, काम का अनुज है ये क्रोध। तो जैसे ही कामाग्नि में कोई है तो जान लेना चाहिए कि उसका छोटा भाई क्रोध वो आसपास ही है, रुका हुआ है कि कब बड़े भाई से निपट लो तो मैं तैयार तुम्हारे लिए। काम वासना से निपट लो तो क्रोध, तो क्रोधाग्नि में जीव जाता है कामाग्नि के पश्चात, और फिर शोकाग्नि, क्योंकि क्रोध की जो अग्नि है वो तो और जलाती है काम की अग्नि से। तो जब काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि इनसे वो जला, तो फिर शोक की अग्नि। यहां तक कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि इस पूरे संसार में लोग इतने शोक में हैं कि शोकाश्रु सागरात, कि शोक के वजह से आंसू आ रहे हैं, शोक में ही आंसू आते हैं, तो शोक के वजह से आंसू आ रहे हैं और उन आंसुओं का एक सागर बन गया है। सोचिए, आंसुओं का सागर, शोक अश्रु सागरात। तो क्रोधाग्नि के पश्चात फिर शोक की अग्नि, और अंततः क्लेशाग्नि, कि फिर उस जीव का क्लेश प्रारंभ होता है। त्रिताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, ये सारे ताप शुरू होते हैं। परंतु इनके विपरीत श्रीमद् भागवत और हमारे अन्य ग्रंथों में अन्य अग्नियों के विषय में बताया गया है जिनका सहारा हमें लेना है, इन अग्नियों से निकलकर अन्य अग्नियों का सहारा लेना है। और इसमें भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में ज्ञानाग्नि, कि यदि हमें इस कामाग्नि, क्रोधाग्नि, शोकाग्नि, क्लेशाग्नि से बाहर निकलना है तो ज्ञान रूपी अग्नि का सहारा लेना होगा, जो कि भस्मसात ये सारे हमारे काम वासनाओं को, शोक और इन सब को भस्म कर दे, ज्ञान अग्नि। 11वें स्कंद में भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी तुलना की गई है अग्नि से, युक्तात्मा अग्निवत, कि जो मुक्त आत्मा, युक्त आत्मा है, साधु हैं, भक्त हैं भगवान के, वो भी अग्नि के समान है, कि उनके संपर्क में आने से ही, जैसे अग्नि के संपर्क में कुछ भी आप डालो अग्नि भस्म कर देती है, जला देती है, वैसे ही सत्संग में आने से ही हमारे सारे जो पिछले पाप हैं वो जल जाते हैं। इसलिए शुद्ध भक्तों की तुलना अग्नि से की गई है, कि अग्नि को बहुत सावधान से बरतना चाहिए, ज्यादा निकट भी नहीं और ज्यादा दूर भी नहीं, क्योंकि वही अग्नि हमारे शरीर का पोषण करती है खाना पकवाकर, और जब ये शरीर अंत होता है तो वही अग्नि शरीर को जलाती है। अग्नि वही है, परंतु हम कैसे उसे हैंडल करते हैं वो हमारे ऊपर है। तो जो भगवान के भक्त हैं वो भी उसी प्रकार की अग्नि के समान हैं। यदि ठीक से उनका संग लिया जाए बिना अपराध के, तो वो हमारे भक्ति का पोषण करते हैं। तीसरी अग्नि के विषय में 11वें स्कंद में बताया गया है कि भगवान के जो चरण हैं, भगवान के जो चरण हैं वो अग्नि के समान बताए गए हैं, कि केवल उन पर ध्यान करने मात्र से, अंघ्री धूमकेतु, केवल उनके चरणों पर ध्यान करने मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो सकते हैं, जल कर खत्म हो सकते हैं। तो इस अग्नि का सहारा लेना है हमें, यदि पिछले सारी अग्नियों से हमें बाहर निकलना है तो। और अंततः भगवान के जो विभिन्न स्वरूप हैं, अलग अलग रूप में भगवान अवतरित होते हैं, तो उसकी तुलना 11वें स्कंद में अग्नि से की गई है। जैसे अग्नि छोटे से किसी लकड़ी के टुकड़े से भी उत्पन्न हो सकती है और बड़े किसी लकड़ी के टुकड़े से भी अग्नि उत्पन्न हो सकती है, वैसे ही भगवान कभी किसी योनि के द्वारा अवतरित होते हैं। जैसे हमने चर्चा की, भगवान पुराण में बताया गया है कि मच्छर की योनि में भी अवतरित हुए, और भगवान वराह देव के रूप में, नरसिंह भगवान के रूप में इतनी बड़ी काया लेकर भी अवतरित हुए। अग्नि उसी समान किसी छोटे पदार्थ से जब प्रज्वलित होती है तो छोटी दिखती है, बड़े पदार्थ से तो बड़ी दिखती है। उसी प्रकार से भगवान के स्वरूप, हालांकि अग्नि में शक्ति है उतनी जलाने की शक्ति, वैसे भगवान चाहे कोई भी स्वरूप में आए, भगवान की शक्ति कम नहीं होती। इसलिए भगवान अपने जो अलग अलग स्वरूपों में आते हैं, उनमें से सबसे शक्तिशाली अग्निवत स्वरूप इस कलयुग में है, उनका नाम हरि नामाग्नि। यदि ये हम उनकी तुलना करें तो भगवान का ये जो स्वरूप है, नाम रूपी स्वरूप भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा आज क्लास गर्म लग रही है क्या? अग्नि अग्नि बहुत हो रहा है शायद, इसलिए पंखे सारे चालू कर दिए हमने। तो भगवान का जो नाम है वो भी भगवान का स्वरूप है, और वो उस अग्नि के समान है जो कि इस महादावाग्नि को नष्ट कर कर, हमारे पापों को नष्ट कर कर, हमें शुद्ध भगवान के भक्ति रस अमृत सिंधु में डुबोने के लिए। तो ये विभिन्न श्रेणियां। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये गौएं गईं तृण के लोभ से, तो भगवान जान गए कि ये सारी गौएं चली गई हैं तृण के लोभ से, और अब दावाग्नि वहां पर प्रज्वलित होने वाली है जहां पर ये फंस गई हैं सारी गौएं। तो सारे सखा चिंतित हुए, सारे सखा चिंतित हुए, और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सखाओं से पहले कृष्ण रामादयस तदा अनुतप्त, कि भगवान इन गौओं की तप्त अवस्था देखने से पहले भगवान अनुतप्त, कृष्ण और राम इनके अंदर अनुताप उत्पन्न हुआ चिंता का। इसलिए जब हम आध्यात्मिक संसार छोड़कर यहां पर आते हैं तो सबसे ज्यादा तप्त भगवान होते हैं अपने हृदय में। हालांकि हम तो आए हैं इस महादावाग्नि में तप्त होने के लिए, परंतु भगवान का हृदय अनुताप से भर जाता है। इसलिए जो भक्तों के विषय में, भगवान के विषय में कहा गया है कि जब वो किसी की पीड़ित अवस्था को देखते हैं, जब भक्त किसी की पीड़ित अवस्था को देखते हैं तो उनके अंदर अनुकंपन या अनुकंपा जिसे कहते हैं, अनुकंपा का अर्थ है कि उनकी पीड़ित अवस्था को देखकर उनके शरीर में, हृदय में, मन में कंपन उत्पन्न होता है। क्या कभी हमारे अंदर ऐसा होता है किसी की पीड़ित अवस्था को देखकर अंदर हम कांप जाए? कई बार होता है जब हम किसी भिखारी को देखते हैं, या अस्पताल में जब किसी की अवस्था, हाल ही में मैंने बहुत से ऐसे रोगियों को देखा अस्पताल में कि ऐसे कंपन सा हो गया उनको देखकर, कि शरीर कितनी पीड़ा दे सकता है, उसे कहते हैं अनुकंपा। तो यहां पर भगवान इस बात को सोचते हुए कि ये दावाग्नि में फंसने वाली है गाय, अनुतप्त, वही निवारण करने वाले हैं, वही इसका शमन करने वाले हैं, परंतु वही भगवान इतना प्रेम करते हैं किससे? गौओं से, गोपाल नाम उनका। और क्यों भगवान अनुतप्त हुए? क्योंकि भगवान ने याद किया कि मैंने जब पूतना का वध किया था तो इन गौओं ने अपने सारे पदार्थ दिए थे मेरी सुरक्षा के लिए, गोमूत्र, गोरज, गोबर, ये सब कुछ मेरे ऊपर मेरी सुरक्षा के लिए लेपा गया था। उस समय भगवान ने प्रण लिया था कि इन गौओं की रक्षा मैं हर समय करूंगा, और अब समय आ रहा है। तो भगवान कृष्ण और राम अनुतप्त अवस्था में, और सभी सखा वो भी अनुतप्त अवस्था में, तो अब ढूंढने के लिए कहां जाएं, क्योंकि वन इतना बड़ा। तब देखिए इनकी बुद्धिमानी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन्होंने देखा कि कहां कहां पर घास आधी खाई हुई है, तो आधी खाई हुई घास को देखते हुए ये गए कि गायों ने खाई होगी आधी घास, क्योंकि यदि पूरी घास वो खाती तो वहीं पर रहती, आधी खाई है इसलिए और घास के लोभ से इसे आधा छोड़कर अगले घास पर गई है। तो उन्होंने इस प्रकार की बुद्धि लगाई, और जैसे ही अब भगवान को पता लग गया कि ये इतना अंदर चली गई हैं गाय कि हम यहां से यदि उन्हें ढूंढने के लिए अंदर जाएं तो वो दावाग्नि में फंस जाएंगी, तब तक दावाग्नि खत्म कर देगी उन्हें। भगवान को पता था कि दावाग्नि आने वाली है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि ये दावाग्नि ये भी एक असुर थी, ये प्रलम्भासुर का एक मित्र बताया गया है ये दावाग्नि। तो भगवान ने अब सोचा कि और समय बर्बाद करने से पहले भगवान के हाथ में जो जादुई छड़ी रहती है, कौन सी है वो? उनकी बांसुरी। तो भगवान ने कहा कि ये जादुई छड़ी मेरे पास है। तो भगवान ने अपनी बांसुरी निकाली और सभी सखा भगवान की तरफ देखने लगे, अरे हमें चिंता हो रही है हमारे गांवों के पीछे और तुम अपनी बांसुरी बनाने के पीछे पड़े हो। कि मान लो कि कोई बहुत टेंशन की घड़ी कहीं पर है और वहां पर आप गाना गाना शुरू कर दो बीच में, तो सभी लोग क्या कहेंगे, अरे यहां पर सभी इतनी चिंता में है और तुम्हें गाने की पड़ी। तो भगवान अपनी बांसुरी बजाना शुरू किए, तो भगवान की बांसुरी में इतनी विशेष जादू है। जब रासलीला शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने बांसुरी बजाई थी तो हर एक गोपी का नाम बांसुरी के धुन से निकल रहा था, बाकियों को केवल बांसुरी की धुन सुनाई दे रही, परंतु गोपियों को अपना अपना नाम सुनाई दे रहा था। सोचिए क्या टेक्नोलॉजी है। अब जैसे आजकल भी टेक्नोलॉजी यदि आप देखो तो क्यों हम अचरज करेंगे, उस समय नहीं हो सकती इस प्रकार की टेक्नोलॉजी कि भगवान एक बांसुरी बजाए और सभी अपने अपने नाम सुन लें उसमें। जैसे आजकल आप यदि बल्क ईमेल करो तो एक सेंड दबाओ और अलग अलग एड्रेस पर वो ईमेल पहुंच जाता है उसके नाम का। और आजकल तो इस प्रकार है कि उसे पता भी नहीं लगता कि ये ईमेल और किसी को भी गया है। तो उसी प्रकार से भगवान ने बल्क ईमेल छोड़ा रासलीला के रात्रि को कि हरेक गोपी ने अपना नाम सुना और किसी भी गोपी को यह पता नहीं कि बाकी सारी गोपियां भी आ रही हैं। हरेक गोपी को लगा कि भगवान मुझे ही बुला रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जब प्रेमी प्रेमिका आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं तो लगता है मुझे ही बुला रहा है या मुझे ही बुला रही, हालांकि भगवान उनका तो दिव्य प्रेम था। तो यहां पर ये अकेले निकली थी, वैसे ही भगवान जब अपनी बांसुरी बजाए इन गौओं को पुकारने के लिए तो ये गौओं का नाम था। इतने सारे नाम बताए गए हैं, हम तो केवल कुछ नाम लिखकर लाए, इतने नाम बताए गए हैं इन गौओं के। भगवान ने जैसे ही बांसुरी बजाना प्रारंभ किया तो एक एक गाय जो जो उनका नाम था, और वो ग्रुप लीडर्स थी तो भगवान ग्रुप लीडर को बुला रहे थे। जैसे सफेद गाय, वो उसके ग्रुप में सारी सफेद गाय, कोई काले रंग की या सफेद और काले रंग की या अलग रंग की, जो भी जितने भी अलग अलग रंग की गायें होती उनका अलग अलग गुट होता, ग्रुप होता। तो भगवान उनके नाम से पुकार रहे थे, बांसुरी की धुन से वो गाय अपना अपना नाम सुन रही, हे धवलिके। देखिए नाम भी कितने सुंदर है, गायों का नाम देखिए, हे धवलिके, हे नंदिनी, हे रंगिनी, हे श्यामे, हे कस्तूरी, हे धुमले, इंदु तिलके, किंजलिके, कितने सुंदर नाम है। आजकल तो कुत्ते लोग रखते हैं और कुत्तों का नाम क्या होता है, यही सब, रॉकी, ब्रूनो, टॉमी, या अगर कोई, ये तो खैर पाश्चात्य देश है, कई भारत में भी यदि कोई कुत्ता रखता है तो ठीक नाम रखता है, मोती है? फिर भी थोड़ा ठीक है। तो इतने सुंदर नाम भगवान अपनी बांसुरी के धुन से इनके नाम पुकार रहे थे, नंदिनी, कस्तूरी, इंदु तिलिके, किंजलिके। और जैसे ही इन गौओं ने अपने अपने नाम सुने, सोचिए कि इनका सौभाग्य देखिए कि भगवान इन्हें नाम से पुकार रहे हैं। हम रोज भगवान को पुकारते हैं उनके नाम से, सोचिए भगवान हमें अपने नाम से पुकारें। अरे इस साधारण भौतिक संसार में जब कोई दूसरा हमें अपने नाम से पुकारता है तो कान खड़े हो जाते हैं, रमेश, अरे मेरा नाम कौन बुलाया, बुलाया किसी और को होगा शायद, परंतु क्योंकि मेरा नाम भी वही है तो सोचिए भगवान के मुख से जब अपना नाम पुकारा जाए तो ये उछल पड़ी, भाव विभोर होकर सारे गांव में उछल पड़ी कि भगवान ने पुकारा हमें। और तुरंत अब ये अपने अपने गुट को लेकर तुरंत भागने लगी। इसलिए यहां पर तात्पर्य में हम ये समझ सकते हैं कि हम भी तृण लोभ से, इंद्रिय भोग की तृप्ति से भगवान से दूर हो गए होंगे, परंतु यदि हमने भगवान के प्रति इतना प्रेम जागृत यदि कर लिया है कि भगवान हमें पुकार लें तो हमें इन गौओं के तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान की तरफ भागना चाहिए। तो भगवान ने अपनी बांसुरी से इन सबको पुकारा और ये सब भागना प्रारंभ की, परंतु जैसे ही ये भागना प्रारंभ की आग की लपटें इनके चारों तरफ, आग की लपटों ने इन गौओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया, और केवल गौओं को नहीं ग्वालों को भी, और यहां तक कि स्वयं भगवान अब अचानक, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अचानक कहीं से यह अग्नि उत्पन्न हुई, यह दावाग्नि, और चारों तरफ, और यह दावाग्नि इतनी प्रचंड मात्रा में भयंकर थी कि इसकी लपटें आकाश के बादलों तक पहुंच रही थी, कि यदि इंद्रदेव वर्षा भी करते तो वहीं पर वो बादल सूख जाते, इतनी प्रचंड ये अग्नि थी। और ऐसा नहीं कि भगवान ने फायर ब्रिगेड को फोन किया या सभी ग्वाल बाल कहे कि उनको पुकारते हैं, नहीं, सभी ग्वाल बाल जो भी समस्या होती, अब सोच रहे थे आज कुछ हुआ नहीं, तो भगवान देखो कुछ हुआ कैसे नहीं, अब देखो क्या होगा। तो सभी ग्वाल बाल भगवान की तरफ अपनी नजर उठाए और आशा से देख रहे हैं, आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि कुछ करो, अब इस अग्नि से कैसे बाहर निकला जाए। तो भगवान अब देखिए समस्या को कैसे सुलझाते हैं। भगवान ने कहा सभी ग्वाल सखाओं को आंखें बंद करो। अब सोचिए यदि इतनी प्रचंड अग्नि आपके चारों तरफ है और आपको कोई कहे कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए आंखें बंद करो, तो क्या हमारे अंदर इतना विश्वास है उस व्यक्ति के ऊपर कि हम अपनी आंखें बंद कर लें? परंतु यहां पर हम पहले चर्चा करेंगे कि भगवान ने इनको आंखें बंद करने के लिए क्यों कहा। निमीलिते क्षण, सबसे पहला कारण बताया गया है कि भगवान ने सोचा कि इस दावाग्नि को मैं पीने वाला हूं। सोचिए अग्नि को कोई पी सकता है? केवल भगवान वही कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इस अग्नि को मैं पीने वाला हूं, और यदि ये ग्वाल सखा इसे देख लेंगे तो ये सहन नहीं कर पाएंगे, तो मैं ये अग्नि पी रहा हूं इन्हें बचाने के लिए, परंतु इस दृश्य को देखकर ही मर जाएंगे, तो फायदा क्या? और यदि इन्हें कुछ हुआ भी नहीं और ये दृश्य जाकर ये यदि माता यशोदा रोहिणी और इनकी माताओं को जाकर बताएंगे तो माता यशोदा तो वहां पर ही गिर जाएंगी कल्पना करते हुए। तो भगवान ने सोचा कि इस दावाग्नि पान को ये लोग देख नहीं पाएंगे, ये लोग सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने मुझे केवल दूध दही मक्खन पीते हुए देखा है, अग्नि पीते हुए नहीं देखा। इसलिए सबसे पहला कारण बताया गया है कि भगवान ने इन्हें कहा आंखों को बंद कर लो क्योंकि तुम सहन नहीं कर पाओगे। दूसरा कारण कर्मकांड विचार को आकर्षित करने हेतु, इसे थोड़ी गहराई से समझना होगा कि कर्मकांड के अनुसार जब किसी व्यक्ति के ऊपर अग्नि या जहर का प्रकोप होता है तो मंत्र औषधि के द्वारा उस जहर और अग्नि के प्रकोप को दूर किया जाता है। तो भगवान अब यहां पर अग्नि के प्रकोप को दूर करने वाले हैं। तो भगवान ने, और कर्मकांड के अनुसार जब यह मंत्र औषधि के द्वारा इसको शमन किया जाता है तो कोई आसपास नहीं होना चाहिए या किसी के दृश्य में यह आना नहीं चाहिए, ये मंत्र औषधि का उपचार। इसलिए भगवान ने सोचा कि अब मैं उस कर्मकांड के विचार के अनुसार इस अग्नि के प्रकोप को कम करने वाला हूं, तो उसके अनुसार, नियम के अनुसार इन्हें इस दृश्य को देखना नहीं चाहिए। तो भगवान यहां पर यह दिखा रहे हैं कि यदि किसी के जीवन में भी जहर या अग्नि का प्रकोप हो तो कर्मकांड का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं उसका निवारण करेंगे यदि विश्वास है तो। तो अपने तरफ आकर्षित करने के लिए उस विचार को भगवान ने इनसे कहा कि आंखें बंद करो, क्योंकि मैं उन्हीं नियमों का पालन करूंगा जिन नियमों का पालन एक व्यक्ति करता है, एक कर्मकांड विचारिक व्यक्ति जब करता है। समझ में आ रहा है ये विचार? अब अगला कारण, भगवान ने सोचा कि यदि इन्होंने देख लिया कि मैं अग्नि पी रहा हूं तो आगे चलकर इस बात का प्रचार ये लोग कर देंगे कि भोग में चढ़ाओ अग्नि, एक कटोरी में जलाओ अग्नि, लगाओ चढ़ाओ। तो मैं यहां पर अग्नि खाने के लिए नहीं आया हूं, अग्नि में पके पकवान खाने के लिए आया हूं। एक और कारण इसके साथ इसके संबंध में है जो यहां पर हम नहीं लिख पाए कि भगवान सोच रहे थे कि मैं इतना मक्खन खा रहा हूं आजकल, यशोदा माई इतना खिलाती हैं और ये ग्वाल सखाओं के साथ जब चोरी करनी पड़ती है तो कितना मक्खन खाना पड़ता है इनके साथ, तो इनके संग में फिर घर में और कितना मक्खन होता है, तो इतना मक्खन को पचाने के लिए अंदर अग्नि होनी चाहिए, बहुत भारी होता है मक्खन पचना, तो इतने मक्खन को पचाने के लिए अग्नि होनी चाहिए, तो वो मेरी अंदर की अग्नि मंद न पड़ जाए इसलिए भगवान ने इस अग्नि को बाहर से अंदर लिया। कह रहे भाई साथ साथ एक तीर दो निशाने, कि साथ साथ ये अग्नि का भी शमन होगा और ये अग्नि जब अंदर जाएगी तो जितना सब ये माखन इत्यादि मैं खा रहा हूं वो पचाने के लिए मेरी जो अंदर की जठराग्नि है उसमें एडिशन होगा। सोचिए, देखिए भगवान क्या क्या सोच रहे हैं, हम तो कभी सोचे भी नहीं कि भगवान ने दावाग्नि पान इन कारणों की वजह से किया हो। कई बार तो पता भी नहीं भगवान ने किया था क्या दावाग्नि पान। अच्छा, भगवान ने किया था। अंतिम कारण, भगवान श्री कृष्ण पर आंख बंद कर भी विश्वास किया जा सकता है, ये भगवान दर्शाना चाहते थे कि सारी दुनिया को ग्वाल सखाओं के द्वारा भगवान दिखाना चाहते थे कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो आंख बंद कर, जैसे अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। साधारणतः अंधविश्वास इतना ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है, परंतु भगवान के संदर्भ में यदि अंधविश्वास भी हो तो वो प्रशंसनीय है। इसलिए भगवान ने इन सखाओं को कहा, और ये सखा इतने भगवान पर विश्वास रखे कि ऐसा नहीं जब आप किसी को कहो आंख बंद करने के लिए तो वो थोड़ा धीरे से देख लेता है क्यों बंद करने के लिए कहा। किसी भी सखा ने अपनी थोड़ी भी आंख नहीं खोली, भगवान ने कहा आंख बंद करो बंद, वो जब कहेंगे तब खुलेगी आंख, और वो भी ऐसी अवस्था में जब चारों तरफ ये प्रचंड अग्नि। ऐसा नहीं कि किसी सखा ने थोड़ी सी एक आंख खोल कर देखी कि अरे पता नहीं आंख बंद करके नहीं, पता नहीं ये भाग जाएगा और हमें छोड़ देगा यहां पर। इतना विश्वास इन सखाओं को भगवान के ऊपर कि जब तक भगवान नहीं कहे तब तक आंखें भगवान इन सखाओं ने बंद रखी। तो भगवान इनके द्वारा दर्शा रहे थे कि ऐसा विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। जीव कृष्णदास ए विश्वास कोरले तो आर दुख नाए। यदि जीव केवल इतना विश्वास कर ले कि कृष्ण ही मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे अधिष्ठाता देव हैं, यदि इतना विश्वास वो कर ले तो आर दुख ना आए, और कोई दुख नहीं उस जीव का। इसके विपरीत सारा दुख क्यों है? क्योंकि विश्वास नहीं कि हम उनके दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं, हमारे रक्षक। तो भगवान ने ये दर्शा दिया कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर यदि अंधविश्वास भी हो तो भी वो प्रशंसनीय है। अब भगवान ने किया क्या कि सब आंखें जब बंद कर ली इन्होंने, तो भगवान ने इस दावाग्नि का पान कैसे किया? भगवान ने अपने दोनों हथेलियों को जोड़ा, जैसे कोई पीता है, किसी पेय को जब कोई पीता है ऐसे पीता है, तो अपने दोनों हथेलियों को जोड़ा और भगवान ने अब इस अग्नि को एक बूंद में परिवर्तित कर दिया, एक छोटी सी बूंद में परिवर्तित कर दिया। तो बूंद में कैसे परिवर्तित कर दिया और क्यों? भगवान जो कि योगेश्वर हैं, अपनी योग शक्ति से इस पूरी अग्नि के तत्व को पेय में परिवर्तित कर दिया। पेय आप समझते हैं, ड्रिंक, बेवरेज। और वो इसलिए क्योंकि भगवान इतना खेल रहे थे अपने सखाओं के साथ, तो भगवान को भूख प्यास लग रही थी। तो देखिए भगवान ड्रिंक कैसे लेते हैं, ये अदा देखिए इनकी, ड्रिंक लेने की अदा। कि भगवान को प्यास लगी तो दावाग्नि को, इतनी बड़ी दावाग्नि को एक शीतल पेय में परिवर्तित करके एक बूंद में, एक बूंद की तरह उसे फिर भगवान लिए। और भगवान जैसे ही अब इस दावाग्नि का पान किया, इस पेय को पिए, तुरंत भगवान की प्यास बुझी। और तब फिर भगवान ने सभी सखाओं को कहा अब आंखें खोलो। सभी सखाओं ने अपनी आंखें खोली और देखा कि पूरा जो वन है, जलना तो दूर की बात है, पहले से ज्यादा ये वन खुशहाल दिख रहा था, हरा भरा दिख रहा था। तो ये सभी सखा ताली मार मार कर, जय हो कृष्ण की जय हो, अरे हमने कल्पना भी नहीं कि तुम इतने दो सेकंड में इस अग्नि को इस प्रकार से खत्म कर दोगे। तो वो पूछने लगे भगवान को कि पता बताओ किया कैसे तुमने? तो भगवान ने कहा सीक्रेट है, ये रहस्य है, ये मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि यदि भगवान बताते कि मैंने इसे पी लिया तो ये सारे सखा जाकर माता यशोदा को तो एज इट इज बताते थे कृष्ण कथा कि मालूम है। बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, आज कान्हा ने अग्नि पी ली। और क्योंकि पहले जो भी भगवान करते थे, माता यशोदा नंद महाराज इनको इतना विश्वास नहीं होता, परंतु अब कई चीजें इनके सामने हो गई। यमला अर्जुन जो दोनों वृक्ष गिर गए और ये सब उखल को घसीट दिया भगवान ने, तो अब ये सखाओं के ऊपर थोड़ा थोड़ा विश्वास नंद यशोदा का होने लगा। तो ये लोग जब आकर कहते ये सारी चीजें कि वो बकासुर की चोंच फाड़ दी, इतना बड़ा बकासुर उसकी चोंच फाड़ दी, तो माता यशोदा ने फिर बकासुर वध के पश्चात कृष्ण को कहा कल से कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना, कोई गवों को चराने के लिए नहीं जाना, केवल घर पे रहोगे और चुपचाप अपने कमरे में रहना, मैं जब बोलती हूं तभी खाना और सोना। सोचिए यहां पे लोगों को क्या कुछ नहीं करना पड़ता, यहां पे तो खाने सोने के लिए आदेश दिया जा रहा है और हम लोगों को उठाया जाना पड़ता है सोने से, और उठो काम करो, जाओ स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, निकलो, निकम्मे क्या कर रहे हो, कई बार बोलते हैं सोता रहेगा दिन भर, परंतु यहां पर माता यशोदा आदेश दे रही, सो और खाओ, कहीं नहीं जाना। तो भगवान ने पूछा, क्यों, क्या हो गया अचानक, क्यों नहीं जाना? तो माता यशोदा ने पूछा, ये क्या किया, कौन था वो बकासुर, बक के रूप में कौन सा असुर आया? तो भगवान समझ गए। पहले भगवान निश्चिंत थे कि माता यशोदा विश्वास नहीं करती थी इन सखाओं के ऊपर, तो अब समझ गए विश्वास भी करने लगी इनके ऊपर। तो यहां पर भगवान चाहते हैं कि माता यशोदा नास्तिक बने। नास्तिक का अर्थ क्या है? जिसके अंदर कोई आस्था नहीं। तो भगवान चाहते थे कि माता यशोदा के अंदर मेरी इन लीलाओं के प्रति कोई आस्था न हो, ताकि भगवान अपनी लीलाएं जारी रखें। किनके लिए? इस संसार के आस्तिकों के लिए। तो इन संसार, हम सब आस्तिकों के लिए भगवान चाहते थे कि माता यशोदा कुछ समय के लिए नास्तिक बने। समझ में आ रहा है? तो भगवान ने फिर कहा कि नहीं नहीं, वो सब झूठ बोलते हैं, मैं कुछ नहीं करता। वो बकासुर, वो बगुला छोटा सा ऐसे ही आया, छोटा सा। हालांकि भगवान ने झूठ नहीं बोला, भगवान के तुलना में वो छोटा सा ही था। हालांकि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उसकी एक चोंच बादलों में थी, उस बकासुर की। तो भगवान माता यशोदा से कहते हैं, वो तो छोटा सा एक बगुला आया और वो आके चोंच मार रहा था, तो मैंने ऐसे ही उसे थोड़ा हथेली से थप्पड़ सा मारा तो चला गया और कुछ नहीं हुआ। तो माता यशोदा फिर भगवान के इन वचनों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास की, क्योंकि भगवान योग माया का पर्दा तुरंत डाल देते थे माता यशोदा के ऊपर, कि वो विश्वास न करे कि मैंने इतने बड़े बक और इस असुर का वध अकेले अपने हथेली से किया। तो इसलिए भगवान आंख बंद करने के लिए कहे, दावाग्नि का पान किया और अपनी प्यास को बुझाए, और उसके साथ साथ गौओं की रक्षा की, ग्वालों की रक्षा की। और भगवान ने फिर दिखा दिया कि भगवान इस भौतिक संसार के किसी भी पदार्थ से अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। और भगवान ने दिखाया कि इस भौतिक संसार के जितने भी तत्व हैं, वो भी यदि आकर कुछ करना चाहें, जैसे कि अग्नि तत्व यहां पर विध्वंस करने के लिए आया, और आगे चलकर जल तत्व आएगा, गोवर्धन लीला, जल तत्व आने वाला है। तो जल तत्व और वायु तत्व तृणावर्त के रूप में, तो ये जितने भी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, इन सब के ऊपर भगवान विजय प्राप्त करते हुए दिखाते हैं कि इन तत्वों का अधिष्ठात्रा देव मैं हूं, और इन तत्वों को मेरी सेवा में लगाना है। इसलिए हमें भी ये जान लेना चाहिए कि हमारा शरीर इन तत्वों से बना हुआ है, और इन तत्वों से बना हुआ ये शरीर हमें भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है। जैसे अग्नि ने अपने आप को भगवान की सेवा में दे दिया और भगवान ने इसका पान किया, तो ये जान लेना चाहिए कि भगवान यदि प्रेमा भक्ति से जो भी कुछ अर्पित किया जाए तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब कुछ इस भौतिक संसार के तत्व हैं, परंतु प्रेम भक्ति से किया जाए तो भगवान कहते हैं अश्नामी। अश्नामी का अर्थ है खाता हूं, जैसे भगवान ने यहां पर अग्नि को ले लिया, अश्नामी, खा लिया। तो इसलिए हमारी जितनी भी विभिन्न प्रकार की अग्नियां हैं, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, शोकाग्नि, क्लेशाग्नि, इन सब का शमन होगा जब हम इन भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे जिन्होंने इस महादावाग्नि का पान किया। बोलो मोर मुकुट वाली बंसी की। तो यही प्रार्थना हमारी होनी चाहिए इनके चरण कमलों पर कि हम जो तप्त हैं। श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया गया है कि एक हाथी जब वो किसी वन की अग्नि में फंस जाता है तो हाथी की बहुत बड़ा शरीर होता है, बहुत बड़ी काया होती है, तो अपने आप को उस अग्नि से दूर करने के लिए नदी में छलांग लगाता है। तो वैसे ही उदाहरण दिया गया है कि हम सब उस हाथी के समान हैं जो तप्त हैं इस भौतिक संसार में, तो हमें छलांग लगानी है भगवान के नामामृत रूपी सरोवर में, और तब जाकर ये जो थर्ड डिग्री बर्न्स जिसे कहते हैं इस संसार में हो रहा है कलयुग में, ये उस बर्नौल के समान है या बर्नौल से भी ज्यादा। तो इसका सहारा हम लेंगे, और इसलिए कहा गया है कि ये जो नामाग्नि है हरिनाम नामाग्नि, चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए इसे इस मुद्रा में दिया है। ये दोनों हाथ ऊपर जब हम करते हैं जैसे अग्नि की लपटें इसी प्रकार से ऊपर जाती, तो जैसे अग्नि की लपटें इसी प्रकार से ऊपर जाती हैं, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह मुद्रा दी है कि हम अपने दोनों हाथ को इस प्रकार से ऊपर करें और उस अग्नि के समान कि इसकी लपटें भगवान तक पहुंचे और भगवान इसका पान करें। परंतु हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान प्यासे हैं इस अग्नि को पीने के लिए, जैसे यहां पर बताया गया था कि भगवान प्यासे हुए, तो हमारी लपटें बहुत ऊंची ऊंची होनी चाहिए तब जाकर भगवान स्वयं उसका पान करेंगे, नहीं तो भगवान अपनी शक्तियों को भेज देंगे बाल्टी लेकर शमन करो उसका। तो प्रचंड अग्नि कब होगी, जब हम प्रचंड मात्रा में इसका सहारा लेंगे। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि आज का हमारा कीर्तन उस प्रकार से हम उस भाव में भगवान को अर्पित करें ताकि भगवान अश्नामी इसे ग्रहण करें। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आए हुए सभी भक्तों का हम लोग फिर से इस्कॉन की तरफ से स्वागत करते हैं, और खास तरह से इस्कॉन की सब मैनेजमेंट टीम से जिन भक्तों ने जन्माष्टमी के लिए बहुत अच्छी तरीके से सेवा की है, उन भक्तों का भी हम लोग तीन बार हरि बोल बोलकर उनका कौतुक करेंगे। तीन बार हरि बोल बोलकर भक्तों के लिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जो भक्त इस कार्यक्रम के लिए पहली बार यहाँ पर उपस्थित हैं उन्हें मैं एक मिनट के लिए खड़े रहने की विनंती करता हूँ। माता जी और प्रभु जी जो इस कार्यक्रम के लिए आज पहली बार उपस्थित हैं, आप एक मिनट के लिए खड़े रहें जिससे कि हम लोग वैष्णव तरीके से आपका स्वागत करना चाहते हैं। हरि बोल हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। हम श्री राधा गोपीनाथ जी श्री गौर नेता है श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में यही प्रार्थना करेंगे कि आज का दिन आपके कृष्ण भक्ति के लिए एक उज्जवल दिन हो। इन सभी भक्तों का हम लोग तीन बार हरि बोल बोलकर स्वागत करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृपया अपने जगह पर बैठ जाए। जो भक्त यहाँ पर अभी खड़े थे उन्हें एक विनंती है कि इन अनाउंसमेंट के बाद आप यहाँ पर एकत्रित हो ताकि His Grace, गोविंदानंद प्रभु आपको हमारे अलग अलग कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही साथ हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के लिखे हुए जो ग्रंथ है वो बहुत ही कम कीमत में ये आपको देंगे। तो जिन भक्तों को इसमें रुचि हो वो गोविंदानंद प्रभु से मिल सकते हैं और उनसे प्रसाद भी प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जो जो भक्तों ने जन्माष्टमी के वक्त लक्ष्मी सेवा की सेवा ली थी उन भक्तों से विनती करते हैं कि वो अपना जो फाइनल अकाउंट्स है वो निखिल प्रभु से आज ही मिल लें, जिससे कि जो फाइनल अकाउंट्स है वो कर सकते हैं। तो जो भक्त के अभी भी अकाउंट्स क्लियर करना बाकी है वो आज ही निखिल प्रभु से बात कर लें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुछ भक्तों का हम लोग यहाँ पर सत्कार करना चाहते हैं, जो डिवोटीज जो बाहर के जो हितचिंतक इस्कॉन के हैं जिन्होंने इस जन्माष्टमी के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से लक्ष्मी सेवा की, उन सभी भक्तों का हम लोग यहाँ पर आज सत्कार करना चाहते हैं। तो मैं उन भक्तों के नाम लेता हूँ, अगर वो यहाँ पर उपस्थित हैं तो वो प्रभु जी से कृष्ण भेद प्राप्त कर सकते हैं। मोहन भाई चव्हाण यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर मोहन भाई जी मुक्तिधाम टेम्पल के ओनर हैं। तीन बार हरि बोल बोलकर प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। अविनाश आवाड़ जी यूनिवर्सल मोटर्स यहां पर उपस्थित हैं। अविनाश आवाड़ जी